ओम शांति। मौन तपस्या भट्टी का आज का पहला दिवस है, देही अभिमानी दिवस। इसी विषय की स्पष्टीकरण के लिए हम सभी के बीच में उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी। हम सब बड़े प्यार से एक हाथ की ताली से बहन जी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आपका भी ज्ञान में आने से और बाबा के यज्ञ में समर्पित होने के बाद यह बहुत बड़ा भाग्य रहा है कि परम श्रद्धेय दादी जी के अंग संग रह करके अपनी लौकिक और अलौकिक सेवा देने का आपको वरदान मिल गया। दादी जी जब अपने लास्ट वर्षों के अंदर शरीर की बीमारियों के कारण जो भी अपने पिछले वर्ष बिता रहे थे, उसमें हम सभी ने देखा कि डॉक्टर सविता बहन दादी को जहां भी ले जाते थे, आप दादी जी के हमेशा साथ रहते थे। आज का तो विषय है देही अभिमानी स्थिति की अनुभूति का, लेकिन अगर सविता बहन को कहा जाए कि दादी जी के अंग संग के अनुभव सुनाइए तो पूरा ही ग्रंथ हम सबके सामने रख सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे अनुभव आपके पास हैं। आप महिला प्रभाग के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं और शिविर में भी आने वाले भाई बहनों को आप बहुत अच्छी पालना अपने क्लासेस के द्वारा देते रहते हैं। आज हम सभी सुनेंगे निरंतर देही अभिमानी स्थिति की अनुभूति, आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी।
ओम शांति। हम सब बाबा के तिलकधारी, ताजधारी और तख्तनशीन बच्चे हैं। तिलकधारी जब कहते हैं तो कौन सा तिलक लगा हुआ है? आत्मिक स्मृति का तिलक सदा लगा हुआ रहे। जैसे एक बार तिलक लगा देते हैं तो लगा रहते हैं, जैसे कई बहनों को मैं अभी भी देख रही हूँ, माथे पर बिंदी लगी हुई है। बहनों का तिलक बिंदी रूप में होता है, भाइयों का तिलक लंबा होता है। मंदिर में जाते हैं तो जो तिलक लगाते हैं वो इस तरह से लगाते हैं। तो ये बाबा ने हमें अविनाशी तिलक लगाया है और वो है अलौकिक स्मृतियों का। आत्मिक स्मृति के साथ ही अलौकिक स्मृतियां भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम निरंतर उन स्मृतियों में रहते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे को वो तिलक लगा हुआ है, नहीं तो वो तिलक मिट जाता है। कईयों की आदत होती है ना, ऐसे हाथ लगाएंगे और तिलक हटा देंगे। तो ऐसे हम बच्चे भी करते हैं। बाबा ने तो तिलक लगाया है लेकिन हम फिर पुरानी स्मृतियों में, पुराने संस्कारों में जाकर के उस तिलक को मिटा देते हैं। तो मैं आत्मा हूं ये मुझे कितना स्मृति रहती है। बाबा कहता है ये पहला पाठ भी है और आखिरी पाठ भी है। पहले पहले फर्स्ट लेसन हम यही पढ़ते हैं लेकिन सबसे ज्यादा भूलते भी इसको हैं। दूसरों को पढ़ाते रहते हैं लेकिन खुद को याद नहीं रहता है। जब योग में बैठते हैं तब याद होता है, थोड़ा समय वो भी, क्योंकि योग शुरू ही आत्मा से होता है। और फिर सारा दिन जब कर्म में आए, कारोबार में आए, तो या तो कर्म कॉन्शियस होते हैं या फिर बॉडी कॉन्शियस होते हैं। सोल कॉन्शियस वही होते हैं जिनका अटेंशन रहता है। बार बार यदि हम वो स्मृति में लाते हैं तब हम रह पाते हैं, क्योंकि देह अभिमान का संस्कार 63 जन्मों का संस्कार बहुत कड़ा है, वो इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। तो अगर देही अभिमानी स्थिति निरंतर बनी रहे तो उसकी सबसे पहली जरूरत है अभ्यास, जो ब्रह्मा बाबा ने किया। हम सब इस कहानी को बहुत बार सुन चुके हैं कि जैसे ही बाबा को ये स्मृति आई, शिव बाबा ने ये रियलाइज कराया कि आप आत्मा हो, उस दिन से बाबा ने छोड़ा नहीं उसको। चाहे किताबें मैं अपनी डायरियां भरी, चाहे दीवार भरी, लेकिन मैं भी आत्मा हूँ और मेरे साथ रहने वाले जो भी हैं वो भी सब आत्मा है। जसोदा भी आत्मा है, पालू भी आत्मा है। निर्मल शांता दादी का नाम पालू था और ब्रज शांता दादी का नाम राधिका था, वो भी आत्मा है। जो भी दिखते हैं सब आत्मा है, आत्मा ही देखना है उनको। और यही अभ्यास हमारी दादियां भी सुनाती हैं कि जब पहले पहले ज्ञान में आए तो और ज्ञान था ही नहीं, ज्यादा ज्ञान का विस्तार नहीं था, सबसे ज्यादा विस्तार सिर्फ आत्मा का ही था। तो रतन मोहि दादी, गुजार दादी कई बार इस बात को बहुत कहते हैं कि हम जब भट्टी में बैठते थे उस समय तो घंटों बस हम आत्मिक स्मृति में ही बैठे रहते थे और इतना आनंद आता था उसमें ही। शिव बाबा का भी सही बिंदु रूप है, बाबा उस समय ये भी ज्ञान नहीं था, शिव बाबा को भी शिवलिंग के रूप में याद करते थे क्योंकि बाबा ने उस समय ये स्पष्ट नहीं किया था कि मैं बिंदु रूप हूँ। ये तो धीरे धीरे बाद में बाबा ने जब ज्ञान के विस्तार स्पष्ट किए तो ये सारी बातें स्पष्ट हुई। तो उस समय आत्मा का ज्ञान ही मुख्य था। तो ऐसा अभ्यास अगर हम करेंगे तब हमारी आत्माभिमानी स्थिति रह पाएगी, नहीं तो हम खुद को भी देह समझते हैं और दूसरों को भी देह देखने लगते हैं क्योंकि रहते ही देह की दुनिया में हैं। और जब दूसरों को देह देखेंगे तो क्या होगा, संगम युगी जीवन, ब्राह्मण जीवन है ना, तो ब्राह्मणों की दृष्टिवृत्ति कैसी होनी चाहिए, आत्मिक दृष्टिवृत्ति होनी चाहिए। किसी भी दूसरे देह को देखते हैं या भाई को देखते हैं या बहन को देखते हैं तो क्या स्मृति आनी चाहिए, ये आत्मा मेरा भाई है। आत्मा रूप में हम सब, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है या बहन है या भाई है, जो भी हम कहें, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, यही स्मृति कायम रहनी चाहिए। लेकिन अगर वो स्मृति नहीं है तो फिर जो उसका वर्तमान स्वरूप दिखाई दे रहा है वो दिखाई देने लगेगा, या तो फिर दैहिक आकर्षण में चले जाएंगे या उसके नाम रूप में चले जाएंगे या उसकी विशेषताओं में चले जाएंगे। ये ऐसे दिखते हैं, इनका आंख ऐसा है, इनका माथा ऐसा है, इनके बाल ऐसे हैं, कहाँ गए। बाबा क्या कहता है, क्या देखो मस्तक में, अभी सुना ना गीत, मैं जगमगाती मस्तक मणि हूँ। तो बाबा सदा कहता है सदा ही मस्तक में मणि को देखो, लेकिन अगर देह में बुद्धि गई तो सांप, बाबा कहता है ना, वो सांप को देख लिया आपने, सांप के मस्तक में मस्तक मणि होती है लेकिन सांप में विष होता है। तो देह को देख लिया तो विष में बुद्धि चली गई और विष में बुद्धि गई तो वो सांप का तो स्वभाव है काटने का, है ना, बाबा कहता है। तो वो सांप फिर छोड़ेगा नहीं आपको, और वो काटेगा माना क्या होगा, उसके विष का प्रभाव हमारे ऊपर जरूर हो जाएगा, हम अपनी स्थिति से नीचे आ जाएंगे। तो सारे दिन में भी सिर्फ मैं आत्मा हूं ये स्मृति में नहीं रखना, लेकिन जो अन्य आत्माएं भी मेरे संपर्क में आ रही हैं उनमें भी मेरी दृष्टि वृत्ति आत्मिक हो, ये पक्का पक्का अभ्यास करना है ना, इसको ढीला नहीं छोड़ना है, अंडरलाइन करना है। बाबा कहते हैं डबल अंडरलाइन करो, क्योंकि वर्तमान समय जो वातावरण है वो तमो प्रधान वायुमंडल और वाइब्रेशंस वाला है, और आप तो रहते भी बॉम्बे में हैं, उसमें डबल है। दुनिया में अगर सिंगल है तो बॉम्बे में डबल है। और अगर मेरी आत्मिक दृष्टिवृत्ति है तो मेरी दृष्टिवृत्ति न्यारी होगी। आप जब अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में आएंगे, अपने कार्य क्षेत्र पर जाएंगे, ऑफिस में, बिजनेस में, जहां भी आप जाते हैं, अगर आपको ये स्मृति है मैं आत्मा हूं, तो आप में रूहानियत दिखाई देगी। अंतर दिखाई देता है? जो देह अभिमान वाले होते हैं और देही अभिमानी होते हैं, फर्क दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? तो अगर मेरी वो दृष्टिवृत्ति है तो मेरे पवित्रता के वाइब्रेशंस, मेरी रूहानियत के वाइब्रेशंस का प्रभाव अन्य आत्माओं तक होगा, भले वो कहें या ना कहें, पर जरूर उनको ये अनुभूति होती है कि ये कुछ न्यारे हैं, हमारे जैसे नहीं है, इनका देखने का तरीका हमसे अलग है। अनुभव होता है नहीं होता है? तो बाबा जो कहता है अपने चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करो, ये आप स्वतः ही सेवा करते हैं। और दूसरा, उनके जो तमोगुणी वाइब्रेशंस हैं उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा अगर मेरी आत्मिक वृत्ति है तो। और नहीं तो जैसे कहा, देह को देखते ही क्या होगा, उस देह रूपी सांप का विष मेरे ऊपर ना आए, ये नहीं हो सकता है। तो उस प्रभाव से बचने के लिए, क्योंकि रहना तो हमें उसी वातावरण में है, तो मैं परिवर्तक हूं, न कि मुझे उनके प्रभाव में आना है। कई बार हम ये एक्सक्यूज देते हैं, क्या करें ना, हम रहते ही ऐसे काम ही ऐसी जगह करते हैं, रहते ही ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों के संपर्क में ही हमको आना पड़ता है, तो फिर उसका असर हमारे ऊपर हो जाता है। लेकिन नहीं, बाबा कहता है मुझे उन आत्माओं को परिवर्तन करना है, न कि उनकी अपवित्रता मुझे अपवित्र बना दे, मेरी पवित्रता उनको पवित्र बनाए या उनकी अपवित्रता मुझे अपवित्र बना दे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मेरी पवित्रता उनको पवित्र बनाए, मेरी पवित्रता ऐसी हो कि उनको भी पवित्र बनने का आकर्षण हो। तो ऐसी मेरी स्थिति होनी चाहिए। तो वो अभ्यास जो हमारे पूर्वजनों ने किया, जो बाबा कहता है, वो अभ्यास हमें इतना पक्का और निरंतर करना है। और उसके लिए बाबा ने कई बार हमें ये बात कही है कि हर घंटे, वैसे तो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल होता है 2-2.5 घंटे में, लेकिन वो लंबा समय हो जाता है, लेकिन हर घंटे में भी 1 मिनट, अगर 5 मिनट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट भी मेरी स्थिति निराकारी स्थिति हो, मेरी स्थिति अशरीरी स्थिति हो, या बीच बीच में चेक करो कि जितना मुझे आवाज में आना अच्छा लगता है उतना ही मुझे आवाज से परे हो जाना, साइलेंस की स्थिति में जाना भी अच्छा लगता है। आत्मा की स्थिति क्या है? साइलेंस की स्थिति है, अंतर्मुक्ता की स्थिति है। कहते अंतर्मुक्ता की गुफा में चले गए, तो गुफा कौन सी है ना? पांडवों के लिए भी दिखाते हैं कि उन्होंने गुफा में जाकर तपस्या की, तो कोई वो गुफा की बात नहीं, लेकिन ये आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जो हम शांति की स्थिति का अनुभव करते हैं, वो गुफा में चले जाना है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। तो जब हम आत्मा की स्मृति में हैं, तो आत्मा के गुण भी स्वतः ही स्मृति में होंगे। जैसे कहते हैं आप शीतल स्थान पर जाएंगे तो आप न चाहें तो भी शीतलता आपको अनुभव होगी ही होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना, चाहें या ना चाहें। लेकिन अगर ठंडी का स्थान है तो ठंड लगनी ही है। ऐसे ही आत्मा के गुण आत्मा में समाये हुए हैं, और जब हम उस स्मृति में जाते हैं तो अपने आप वो स्थिति मुझे अनुभव होती है। तो ये मुझे चेक करना है कि बहुत आवाज में है, बहुत हलचल में है। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमको बहुत हलचल में ले आती हैं। कई बार हम बहुत सेवा के कारण बहुत आवाज में भी होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं, और उसी समय 1 सेकंड में बाबा कई बार ये ड्रिल कराता है कि इतनी हलचल की स्थिति में तुरंत जैसे कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे ही मैं अपने आप को कितने भी विस्तार में हूं उससे समेट कर आत्मा रूपी सार में स्थित हो जाऊं, सब कुछ फुल स्टॉप,
हो सकता है.
कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर और समेटने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति अगर होगी तो फिर ऐसा हम कर सकते हैं. और ये स्थिति अंतिम समय हमें बहुत मदद करेगी. ये जो अभ्यास है बाबा कहता है वो आपको पासवी डोनर बनाएगा. और अगर ये अभ्यास अभी से नहीं किया, अगर ये बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो अंत में धोखा खा लेंगे. भले ही हैं, हमें पता है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अंत में हम कर ही लेंगे, हम विजयी हो ही जाएंगे. हाँ, हम विजयी नहीं होंगे तो कौन होंगे, कितना भी निश्चय हो, लेकिन अगर बहुत काल से ये अभ्यास नहीं है, हाँ, जब चाहे मन को फुल स्टॉप लगा लें. बाबा कहता है ब्रेक पावरफुल हो. जिस गाड़ी का ब्रेक पावरफुल होता है, जहां ब्रेक लगाओ वहीं गाड़ी खड़ी हो जाती है. और ब्रेक पावरफुल नहीं है तो बहुत पहले से ब्रेक लगाना पड़ता है. पता है कि खड़ी नहीं होगी, अगर चली गई तो एक्सीडेंट हो सकता है. तो मन की भी स्थिति ऐसी है. तो ब्रेक पावरफुल हो, इसके लिए बहुत सारा अभ्यास और तीव्र पुरुषार्थ चाहिए. तो ये अभी से अटेंशन देने की जरूरत है कि हर घंटे में मुझे कम से कम एक मिनट जरूर बिल्कुल अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है. और जब ये अशरीरी स्थिति होगी तो बाबा के साथ जो हमारा योग है वो भी सहज होगा और निरंतर होने लगेगा. क्योंकि देही अभिमानी स्थिति या अशरीरी स्थिति बाप समान स्थिति है. शिव बाबा के समान स्थिति है या नहीं है? कई बार हम योग लगाते हैं लेकिन युद्ध करनी पड़ती है. सहज योग नहीं लगता है क्योंकि मन कई प्रकार के देह अभिमान के विस्तार में चला गया होता है. सारे दिन में अगर मैंने सारा दिन अटेंशन नहीं रखा तो मुझे योग करने में मेहनत करनी पड़ेगी. और फिर जब स्थिति बनेगी भी तो भी वो ज्वालामुखी योग की स्थिति नहीं होगी. लेकिन अगर मेरी निरंतर आत्मिक स्थिति है तो जैसे ही आप योग में बैठेंगे तुरंत जो स्थिति का अनुभव करना चाहेंगे योग में, उस स्थिति का अनुभव होगा. और बाबा के जो प्यार का अनुभव, वो भी हमें सहज होगा. बाबा कहते हैं न्यारी और प्यारी स्थिति है. जब आप न्यारे होते हैं तो बाबा के प्यार का अनुभव होता है. कई भाई बहने शिकायत करते हैं कि हम योग तो लगाते हैं बाबा से, लेकिन बाबा के प्यार का जो अनुभव हमें होना चाहिए वो अनुभव नहीं होता है. क्यों अनुभव नहीं होता है? क्योंकि देह से न्यारे, देह के संबंधों से न्यारे नहीं हो पाते हैं. आप क्या कहेंगे? सभी को बाबा के प्यार का अनुभव है. योग में यहाँ भट्टी में बैठे हैं तो विशेष क्या अनुभव करना है? अतिंद्रिय सुख का अनुभव करना है और बाबा के लगन में मगन स्थिति का, यानी बाबा के उस प्यार का मुझे अनुभव करना है कि मैं बाबा के स्नेह में समा जाऊं. यही अनुभूति की बात है ना. तो जितना हम देही अभिमानी होंगे उतना ये स्थिति हमारी सहज बन जाएगी. ठीक है. और ज्वालामुखी योग के बारे में बाबा कहता है कि जब हम परम धाम में बीज रूप स्थिति में होते हैं, अशरीरी स्थिति में होते हैं, आत्मा जिस अनादि स्वरूप में इस सृष्टि पर आई वो है सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण सत्व प्रधान स्थिति. उस स्थिति में जब मैं बाबा को याद करती हूँ परम धाम में, तो जो योग अग्नि का अनुभव होता है, पावरफुल योग जो होता है, वो आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश करता है. उस स्थिति में ही विकर्म विनाश होते हैं, चाहे वो इस जन्म के हैं, चाहे वो 63 जन्मों के हैं. और किसी भी योग से विकर्म विनाश नहीं होते जब तक कि योग अग्नि का रूप न ले। और वो योग की स्थिति सिर्फ परम धाम में जब बीच रूप स्थिति में, बिंदु रूप स्थिति में हम बाबा को याद करते हैं, यानी अशरीर स्थिति, संपूर्ण निराकारी स्थिति। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं ना लोगों को कि अगर आपको कागज जलाना है तो क्या करना पड़ेगा, लेंस को हम रखेंगे वैसे कागज पड़ा रहेगा सूर्य के प्रकाश में तो कुछ नहीं होने वाला है, दिनों तक पड़ा रहेगा। लेकिन आपने जैसे ही सूर्य की किरणों को फोकस कर दिया, एक बिंदु पर फोकस कर दिया, तो कुछ ही मिनटों में वो कागज चल जाएगा। वो शक्ति तब उत्पन्न हुई जब वो पूरी तरह एकाग्र हो गए। ऐसे ही जब बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा पर पूरी तरह एकाग्र होती हैं, तब मेरे विकर्म विनाश होते हैं। सोने को भी जब आप तपाते हैं तब उसकी अशुद्धि निकलती है, ऐसे ही सोने की अशुद्धि नहीं निकाली जा सकती। आप में से कई भाई बहने जो हैं वो ज्वेलर भी हैं होंगे, क्योंकि बॉम्बे में तो बिजनेस सिटी है। कौन कौन भाई बहने हैं जो ये ज्वेलर का काम करते हैं? देखिए, तो क्या करना पड़ता है उसको, तपाना ही पड़ता है। बिना तपाए वो शुद्धि उसमें नहीं आ सकती। तो ये भी तपाता है बाबा हमें उस पावरफुल स्टेज में, तब जाकर के आत्मा की अशुद्धियां, जो पाप की अशुद्धियां हैं, वो समाप्त होती हैं। और अशरीरी स्थिति बाबा कहता है वो एक इंजेक्शन की तरह भी काम करती है। जब हम देह से न्यारे होते हैं, देह अभिमानी स्थिति में है और मानव शरीर का कोई हिसाब किताब है, रोग के रूप में हमारे सामने आया है, तो फिर देही अभिमानी स्थिति में उस रोग का कष्ट हमें कम महसूस होता है। जिसको हम कहते हैं आत्मा तो स्वस्थ है, भले तन अस्वस्थ है लेकिन आत्मा स्वस्थ है। और उस स्थिति में क्योंकि बाबा से हम डायरेक्ट करंट ले सकते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बाबा की फ्रीक्वेंसी के समान होती है। हम कहते हैं राजयोग करेंगे तो पहले आत्मा की स्मृति में आना क्यों जरूरी है, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है और मैं हूं देहधारी, तो उसकी करंट फ्लो होगी मेरे अंदर। दो तारों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, दोनों का रबड़ हटाना पड़ेगा तब उसमें करंट फ्लो होगी। तो ये भी देह अभिमान का जो आवरण है आत्मा के ऊपर, जब वो हटेगा तभी तो बाबा की करंट फ्लो होगी मेरे अंदर। तो जब बाबा की रूहानियत की शक्ति मुझे मिलेगी, वो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति का मैं अनुभव करती हूँ, तो उस रूहानी शक्ति से जो मेरे शरीर के रोग और कष्ट हैं, वो सूली से कांटा हो जाते। बहुत भाई बहनों का ये अनुभव भी है, आप में से भी बहुतों को ये अनुभव होता है कि जब हम पावरफुल योग करते हैं, उस स्थिति में हम जब योग करते हैं तो सचमुच हम ऐसा अनुभव करते हैं। मेरे भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। तो मेरा एक बहुत ड्रामा में एक बड़ा पेपर था तन के हिसाब से, तो मैं उसी रूप से आपसे शेयर करती हूँ कि कैसे आत्मिक स्थिति हमें मदद करती है। तो ऐसे ही सेवा के लिए मैं बाहर गई हुई थी और जब लौट रही थी, है ना, अहमदाबाद से बाय रोड आ रहे थे, तो एक्सीडेंट हुआ और मैं सो रही थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं सो रही थी, तो मुझे नहीं पता चला कि वो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बाबा की याद में थी और मुझे नींद आ गई। कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला, वो थके हुए थे, नींद लग गई। अब वो कैसे एक्सीडेंट हुआ ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हुआ और मैं सीधा बेहोश हो गई, नींद से सीधा बेहोश हो गई। तो मुझे तो एक्सीडेंट के सीन का बिल्कुल मालूम नहीं कि एक्सीडेंट भी हुआ है, और अस्पताल मुझे लाया गया और हेड इंजरी हुई थी, यहाँ पर स्टिचेस वगैरह लगे काफी, वो सब हो गया, तब तक भी मुझे कुछ मालूम नहीं क्योंकि मैं अनकॉन्शियस थी। और जब मुझे होश आया एक घंटे के बाद, तब तक सब कुछ हो चुका था। और जैसे ही मुझे होश आया मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो आंख खुली तो मैंने बिल्कुल, मैं जैसे अपने आप को आत्मा देख रही हूँ, है ना। बहुत सारे लोग मेरे आसपास खड़े हैं, लेकिन मेरी जो फीलिंग थी उस समय कि मैं बिल्कुल अपने आप को आत्मा देख रही हूँ और बाबा जो है वो मुझे ये टच कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पहले तो मैं सोचने लगी कि हुआ क्या है, फिर मुझे समझ में आया, मेरे कपड़े देख करके मेरी नजर पड़ी कि सब खून खून लगा हुआ है, इसका मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तब मुझे समझ में आया, जबकि मुझे कुछ दर्द नहीं हो रहा था, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी क्योंकि सब इंजेक्शन लग चुके थे उस समय तक, और जब हुआ था तब मुझे पता ही नहीं। और सबको मैं देख रही हूँ तो सबको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ हुआ भी है, लेकिन लोगों के चेहरे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ी बात हुई है, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। और वो सचमुच बड़ी बात थी क्योंकि हेड इंजरी थी और तब तक कुछ स्कैनिंग वगैरह नहीं हुआ था, वो स्कैन के बाद क्या अंदर है तब पता चलेगा ऐसे। लेकिन मेरे सब टेस्ट कर रहे थे, डॉक्टर बुलवा रहे थे मुझसे, सारे हाथ पांव मूवमेंट करा के देखते हैं ना कहीं पैरालिसिस तो नहीं हो गया है कुछ ऐसा, ये सब चल रहा था। लेकिन मेरी इतनी स्ट्रांग फीलिंग थी अंदर से, मतलब ये बाबा की मदद और टचिंग मैं कहूंगी कि बिल्कुल जैसे सोल कॉन्शियस स्टेज नेचुरल है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और इसलिए मुझे कोई फीलिंग भी नहीं थी। और दूसरा कि जैसे बाबा ने मुझे कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो मैं ना सब ठीक हो जाएगा, मैं ना बिल्कुल मेरा मन उसमें स्थिर है कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ हुआ है लेकिन जैसे वही मैंने कहा सूली से कांटे जैसा, मुझे तो कांटा भी नहीं लग रहा था लेकिन मतलब वो एक मैं बात कह रही हूँ। तो फिर 3 दिन तक आईसीयू में रखा गया, सारे टेस्ट वगैरह हुए और सब कुछ नॉर्मल, अंदर भी जो इंजरी थी वो कुछ भी नहीं, बाहर की वो इंजरी थी, थोड़ा बोन में फ्रैक्चर भी हुआ था और बाहर से जो स्टिचेस वगैरह हुए वो सब मैंने सब एक्सटर्नल था। तो जब एक्सीडेंट जो था वो तो बहुत बड़ा था, ऐसे जिन्होंने कहा वो गाड़ी जो है वो बिल्कुल जैसे खत्म हो गई, लेकिन उसमें भी मैं आगे वाली सीट पर बैठे हुए कैसे बच गई पहले तो यही वंडर था, क्योंकि वो हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था और ट्रक के साथ हुआ था। फिर दूसरी बात की बच गई तो फिर अंदर कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बाहर बाहर से होकर के पूरा हो गया, है ना। ड्राइवर भी बच गया, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को तो फिर भी स्टिचेस आए। और वो 3 दिन जो आईसीयू के थे वो मुझे ऐसा लग रहा था मैं फूलों की स्टेज पर सोई हुई हूँ, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं बेड पर सोई हूँ। मैंने रियली वो फीलिंग ऐसी थी जो मैंने आज तक कभी योग में भी अनुभव नहीं की। माना बाबा हमको कैसे मदद करता है, जब हम बाबा के श्रीमद प्रमाण अपनी स्थिति रखते हैं कोई भी परिस्थिति में, भले परिस्थिति उत्पन्न हुई लेकिन अगर मेरी स्थिति श्रेष्ठ है तो बाबा कहते हैं ना हिम्मते बच्चे मददे बाप, बिल्कुल वैसा ही मैंने फील किया। और विदिन 10 डेज जो है मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, बिल्कुल नॉर्मल, अपना जो भी मैं सेवाएं करती थी वो सब नॉर्मल रीति से, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी मैं अपनी सेवाओं में आ गई। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम सिंसियरली इस संगम युग में अपने इस ब्राह्मण जीवन में देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ मुझे समझ है, जान लिया ना मैं आत्मा हूं, वो ज्ञान तक ही सीमित है लेकिन अभी तक वो मेरे स्वरूप में नहीं है, मेरे व्यवहार में नहीं है, मेरे कर्म में नहीं है। जैसे बाबा कहता है हमेशा सोचो मैं आत्मा ही आंखों के द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा ही कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा ही खा रही हूँ, ऐसी स्मृति रहती है भूल जाते हैं। तो मतलब कितना हमें अभ्यास करने की जरूरत है, किसी भी चीज को जब हम शुरू में अभ्यास करते हैं तो मुश्किल लगती है जरूर, लेकिन धीरे धीरे वही मेरी नेचर बन जाती है, ऐसे बाबा ने हमें समझाया है कि फिर वो नेचुरल नेचर हो जाएगी। तो आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा मैं आत्मा हूँ, जैसे अभी देह नेचुरल स्मृति में रहती है ऐसे आत्मा की स्मृति बिल्कुल नेचुरल हो जाएगी, ठीक है। और साक्षी स्थिति है, जब हम देही अभिमानी स्थिति रखते हैं तो वो हमारी साक्षी स्थिति है, तो फिर बाप को हम साथी बना पाते हैं। जितना हम न्यारे रहते हैं, चाहे हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म के प्रभाव से भी न्यारे रहना। साक्षी होने का ये मतलब है कि आप जिन भी आत्माओं के पार्ट को देख रहे हैं, संसार में हम सभी कर्म कर रहे हैं तो आत्माओं के पार्ट के संपर्क में भी आ रहे हैं, लेकिन उन आत्माओं के पार्ट को भी साक्षी होकर देखना। अब हर एक आत्मा अलग अलग रीति से पार्ट बजा रही है, सबके संस्कार अलग अलग हैं। जैसे हम देखते हैं दुनियावी ड्रामा में जिसको जो रोल मिला है तो वो अपना वो रोल प्ले करेगा। अब विलन है, भले वो नेचुरल लाइफ में विलन नहीं है, नेचुरल लाइफ में वो अपने बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ड्रामा में उसको रोल क्या मिला है, विलेन का मिला है, तो उसको प्ले करना ही पड़ेगा ना, चाहे ना चाहे क्या करना पड़ेगा, विलेन का रोल प्ले करना पड़ेगा। तो बाकी जो एक्टर हैं क्या वो उसको विलेन समझ लेते हैं, वो भी समझते हैं कि ये अपना रोल प्ले कर रहा है। तो मुझे भी अपने आप को ये समझाना है कि ये बेहद का ड्रामा है, जैसे वो हद का ड्रामा है ऐसे ये भी बेहद का ड्रामा है, और अन्य आत्माओं के पार्ट को वो जो पार्ट उनको मिला है वो बजा रही है, तो मैं हस्तक्षेप करूं उसमें, तेरे को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको वो पार्ट किससे मिला हुआ है, डायरेक्टर से मिला हुआ है, जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है उसने उस बेहद के ड्रामा में इसे पार्ट दिया हुआ है, तो जो पार्ट है वो बजा रहा है। मुझे सिर्फ साक्षी होकर के उस आत्मा के पार्ट को देखना है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं स्व परिवर्तन करना है, दूसरों के परिवर्तन की बात नहीं करना। दूसरों के पार्ट को देखूंगी तो मेरा पार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर एक एक्टर दूसरे एक्टर के पार्ट को देखने लगे तो क्या होगा, अपना पार्ट ठीक से प्ले कर पाएगा, उसके पार्ट के कारण उसका खुद का पार्ट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जितना देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना ही साक्षी होकर के हम इस बेहद के ड्रामा में अपना पार्ट बचा पाएंगे, अन्य आत्माओं के पार्ट से मैं आत्मा प्रभावित नहीं होंगी, और तभी बाबा के साथ का मुझे अनुभव होगा। साक्षी और साथी दोनों शब्द कंबाइन है, और देही अभिमानी स्थिति कर्मेंद्रियों के अधिकार की स्थिति है, क्योंकि देह का संबंध कर्मेंद्रियों से भी है। तो बाबा कहता है कि कई बार देह अभिमान में आते ना तो कर्मेंद्रियों के रस आकर्षित करते हैं, जैसे देखने का रस है ना, देखने का रस, देखे बिना रह नहीं सकते, जो चीजें नहीं देखनी चाहिए वो भी हम देखते हैं, फिर सुनने का रस है कानों से, अब हम सभी जानते हैं कि हम क्या सुनते हैं, हाँ क्या देखते हैं, और बोलने का रस है, कुछ आत्माएं जो होती हैं वो बोले बिना रह ही नहीं सकती हैं, वैसे हमें साइलेंस का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना है। 63 जन्म तो बोले कथाएं की, कहानियां की, बाबा कहते हैं रामायण और महाभारत क्या है, कैसे बने ये रामायण और महाभारत, कथाएं हैं, वर्णन के रस हैं, वो हम सुनते हैं, सुनने का रस भी कहाँ होता है, बोलते हैं और सुनते हैं, एक दूसरे की कथाएं करते हैं, जिसको पर चिंतन पर दर्शन बाबा कहता है, तो आज भी उसमें रस आता है क्योंकि आदत पड़ी हुई है। लेकिन इन रसों से मन निकल जाए, वो अल्पकाल के रस हैं, और जो आत्मिक सुख है, अतींद्रिय सुख है, जो बाबा का सुख है, ईश्वरीय सुख जिसे कहते हैं, उसमें सदाकाल मन स्थित रहे, ये अधिकारी स्थिति है। और अगर इस स्थिति में नहीं है तो कभी आंख धोखा देगी, कभी कान धोखा देगा, कभी मुख धोखा देगा, हाँ बोलना तो नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया, सुनना तो नहीं चाहते थे लेकिन सुन लिया, देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन, फिर बाबा कहता है कर्म इंद्रियों के वश हुए, परवश हुए, तो परवश की स्थिति क्या होती है, वो सदा ही उदास होंगे। जो कर्मेंद्रियों के दास होते हैं वो कभी भी सदा खुश नहीं रह सकते, मूड बदलती रहेगी, कभी खुश हैं, कभी दुखी हैं, कभी उदास हैं, कभी परेशान हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियां शान से परे कर देती हैं, माया के प्रभाव में आ जाती हैं, तभी कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं। और माया भी बिल्ली की तरह है, जैसे बाबा नहीं कहता है, तो जैसे बिल्ली जो है वो धोखे से काम करती है। तो यहां भी अगर मेरी देही अभिमानी स्थिति है तो हम सदा ही स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहेंगे, कर्मेंद्रियों पर मेरा पूरी तरह से अधिकार है, कभी भी हम कर्मेंद्रियों से धोखा नहीं खाएंगे। तो यहां भी हम चेक कर सकते हैं अपने आप को कि क्या मेरा कर्मेंद्रियों पर सदा अधिकार रहता है। इसलिए बाबा कहता है रोज रात को अपना चार्ट चेक करो। जैसे ब्रह्मा बाबा रोज रात को अपनी दरबार लगाते थे, क्योंकि देह के साथ देह की कर्मेंद्रियों का बहुत समीप और घनिष्ठ संबंध है। तो आज मुझे किसी कर्मेंद्रिय ने धोखा तो नहीं दिया, मैं आत्मा इस स्वराज्य की राजा हूं, तो राजा अपने कर्मचारियों से पूछ सकता है ना। तो उस तरह से रोज चार्ट चेक करेंगे तो फिर अगले दिन के लिए वो परिवर्तन की शक्ति भी हमें बाबा से मिल जाएगी। फिर आत्मिक स्थिति है, देही अभिमानी स्थिति है, तो बाबा कहता है आप कोई भी कार्य करेंगे सदा अथक रहेंगे, थकेंगे नहीं। कई बार मुरली में बाबा कहता है आप नीचे आबू रोड से माउंट आबू भी आ जाएंगे अगर आत्मा के भान में चले, तो पता ही नहीं चलेगा कि पहाड़ी भी चढ़ गए, या कितना भी लंबा चले जाएंगे, आपका घर 10 किलोमीटर दूर है और आप पैदल चलकर आए सेंटर पर, तो 10 किलोमीटर की भी थकान आपको नहीं होगी। ये तो बाबा के कहने का एक एग्जाम्पल है, लेकिन सचमुच अगर हम देही अभिमानी स्थिति में होते हैं, बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपकी सेवाएं बढ़ती जाएंगी, सेवाओं का विस्तार होता जाएगा, आप बहुत बिजी होते जाएंगे, आपको अपने लिए समय नहीं मिलेगा। देखो ब्राह्मणों को तो डबल करना पड़ता है, आप लौकिक कारोबार भी संभालते हैं, अलौकिक सेवाएं भी जहां होती हैं वहां भी बाबा के बच्चों को सेवा करना है, फिर अपना पुरुषार्थ भी करना है, सब बातें मिलाकर कितना व्यस्त होते हैं। तो बाबा कहता है अगर आपने 2 मिनट भी बीच में अशरीरी स्थिति का अभ्यास कर लिया, सारी थकान खत्म हो जाएगी। माना अशरीरी स्थिति इतनी पावरफुल स्थिति है कि सही रीति से अगर आप बिल्कुल अशरीरी हो गए और परम धाम में बाबा के साथ अपने आप को 2 मिनट के लिए आपने रख लिया, बिल्कुल रिचार्ज हो जाएंगे, बैटरी फुल चार्ज, जो एकदम डाउन थी वो बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो अथक बनने का सबसे बड़ा साधन है अशरीरी स्थिति। कई बार बाबा कहते हैं एक एक को 10-10 सेंटर संभालने पड़ेंगे, आपको सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा, आप सोने का टाइम नहीं मिलेगा, और अगर थकान होगी तो अशरीरी हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि 4 घंटे नींद कर ली, इतना रेस्ट आत्मा को मिल जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा है किसी ने ऐसे, किसी को ऐसा अनुभव है? आप में से आप सब इतने भाई बहने बैठे हैं, किसी को ऐसा अनुभव है कि अशरीरी स्थिति का अनुभव किया और ऐसे अनुभव किया कि जैसे रेस्ट कर ली हो? कोई नहीं। काम किया लेकिन जरा भी थकान नहीं हुई, ये तो हमको अनुभव है। बहुत भाई बहनों को ये अनुभव होता है कि बाबा की याद में और देही अभिमानी स्थिति में जब हम अपने कार्य करते हैं तो थकान बिल्कुल भी नहीं, कितना भी घंटे सेवा का कार्य कर लेंगे लेकिन बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी आप करो जो बाबा ने कहा है, वो हमें करके देखना है ना, तभी तो उसका प्रमाण मिलेगा जो बाबा कहता है कि हम उस अशरीरी स्थिति में स्थित हुए और हमने महसूस किया कि जैसे नींद में रेस्ट मिल जाती है, जैसे सोकर उठते हैं तो कैसे फ्रेश होते हैं, ऐसे ही रेस्ट मुझे मिल गई। और दूसरा बाबा कहता है कि सिर्फ ये याद नहीं रखना कि मैं कौन सी आत्मा हूं, लेकिन ये भी याद रखो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं? मैं वही कल्प पहले वाली बाबा की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं वही कल्प पहले वाली देवात्मा हूं, देवता बनने वाली आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं, पूर्वज आत्मा हूं, विजयी रतन हूं। क्योंकि स्वमान में रहेंगे तो देह अभिमान खत्म होगा। बाबा ने स्वमान की स्मृति क्यों दिलाई है? क्योंकि स्वमान देह अभिमान को खत्म करने वाला है, और अगर स्वमान नहीं है तो फिर बाबा कहता है अभिमान होगा, और अभिमान अपमान की फीलिंग कराएगा। देह अभिमान अभिमान में भी जल्दी बदल जाता है, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। दूसरों को आत्मा का कोर्स हम कराते हैं तो हम कहते हैं ना, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, हाँ मैं प्रोफेसर हूं, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं बहुत संपत्ति वाला हूं, धनवान हूं, जो भी, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मेरी बहुत पर्सनालिटी अच्छी है। ये सब सोचना क्या है? ये सब क्या है? ये सब देह अभिमान है, ये सब कलयुगी स्मृतियां हैं जो व्यक्ति में अभिमान पैदा करती हैं। और अभिमान की निशानी, उसे बहुत जल्दी अपमान महसूस, किसी की भी छोटी सी भी बात को वो सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़ा समझते हैं ना अपने आप को, मैं फलाना फलाना हूं। लेकिन स्वमान में रहेंगे तो वो शुद्ध स्मृति है, और इसीलिए बाबा कहता है स्वमान में रहेंगे तो स्वतः सम्मान मिलेगा, मांगने की भी जरूरत नहीं है। वो शुद्ध नशा है, शुद्ध नारायणी नशा जिसे हम कहते हैं, बाबा कहता है वो रुहाब भले रखो, उसको रुहाब कहेंगे, रौब नहीं कहेंगे। अभिमान में रौब होता है, हम रौब जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुहाब में, रूहानी रुहाब में रहना, वो नशा हमारे नेत्रों से दिखाई दे कि इन आत्माओं को क्या मिला है, क्या खुशी है इनमें, या वो जो झलक है, फलक है जिसको बाबा कहता है। क्योंकि जब हम स्वमान में रहेंगे, उस खुशी और नशे में रहेंगे, तो वो स्मृति स्वरूप का अनुभव दूसरों को भी होगा। होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर वो परसेंटेज में है, हाँ भट्टी किसी लिए कर रहे हैं कि जो कमी है उस कमी को हम पूरा करें, तो निरंतर उस स्मृति को बनाना है। अभी क्या होता है, कभी स्मृति में रहते हैं, कभी विस्मृति में रहते हैं, निरंतर नहीं रहते हैं। सदा ही मेरी अलौकिक स्मृति बनी रहे, मेरा जीवन बाबा ने जो मुझे स्मृतियां दिलाई हैं, सारा दिन उसी प्रमाण चले, अमृत वेले से रात तक, हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। असंभव है या संभव है? संभव है, मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है लेकिन संभव है ना। तो वो जरूर हो सकता है, मुझे समय लगेगा उतना अभ्यास करके मैं अपने मन को उस स्थिति में लाऊं, लेकिन लक्ष्य तो रखेंगे ना, लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण आएंगे। अगर लक्ष्य ही नहीं है तो लक्षण आने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो अमृत वेले से ही शुरू करना है। बाबा कहता है अमृत वेले मेरी पहली स्मृति हो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, और मैं परम धाम से अभी अभी इस शरीर में अवतरित हुई हूं। ये तन जो संगम युगी तन है, ये तन मेरा नहीं है, इस तन में मैं मेहमान हूं। इस तन को मैंने बाबा को दिया, ऐसे कहते तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ये बाबा ने मुझे सेवा अर्थ कुछ समय के लिए दिया है, ये मेरी अमानत है। तन मेरा है, तो संकल्प उठते ही ये स्मृति का होगा। तो बाबा कहता है जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलेगा। तो अमृत वेले अगर इस स्मृति का बीज बोया तो सारा दिन मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जब हम समझेंगे कि मैं मेहमान हूं तो मेहमान का लगाव नहीं होता है। आप कितने भी अच्छे स्थान पर जाओ, आपको पता है हम यहाँ मेहमान हैं, तो वहां किसी भी चीज से लगाव होगा, पता है ना, जाना है वापस, यहाँ तो रहना नहीं है, कितना भी अच्छा है ठीक है। तो ऐसे ही ये दुनिया, इसमें हम, इस तन में भी मेहमान है, इस दुनिया में भी हम मेहमान है। तो फिर इस देह से जो लगाव है, जो मोह है, जो मेरापन है, जो दुख देता है, देखो कुछ भी तन को थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए ना, तो कितना मन की स्थिति खराब होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी तक भी तन में मेरापन है, देह में मोह है अभी तक भी। बाबा कहता है अचानक और एवर रेडी, तैयार रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो तैयार हैं क्या? कहेंगे घंटी बज जाए अभी तो तैयार हैं? हाँ, इतने नष्टो मोहा, नष्टो मोहा बहुत बातों से होना है, लेकिन आज देह की बात हो रही है, देह अभिमान की बात हो रही है। तो सबसे पहले अपनी देह से मैं कितना नष्टो मोहा हूं। सबसे बड़ा भय दुनिया में मृत्यु का भय है। आत्मा इस देह को छोड़ना नहीं चाहती है। छोड़ना चाहती है? नहीं छोड़ना चाहती। क्यों? और बाबा ने वही हमको शुरू से पक्का कराया है, पहले दिन ही बोल दिया कि अगला साल नहीं, अगली दिवाली नहीं आने वाली है। तो क्यों कहा बाबा ने ऐसा? क्योंकि बाबा को पता है कि देह में बहुत मोह है। तो उस मोह के जो सूक्ष्म रस्सियां हैं, वो रस्सियां भी टूट जाएं, देह के बंधनों से आत्मा सहज मुक्त हो जाए। इस देह के वस्त्र को उतारना सहज हो, देह का वस्त्र टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे लौकिक में भी, इस उसमें भी अगर वस्त्र टाइट होते हैं तो क्या होता है, सहज उतार नहीं पाते हैं ना। तो बाबा ने हमें ये याद दिलाया है कि इस देह रूपी वस्त्र की स्मृति भी ऐसी हो कि जब चाहे इससे न्यारे हो जाएं, जब चाहे कर्म करने के लिए शरीर में आ गए। तो मैं आत्मा इस देह में आई हूं, मैं इससे बिल्कुल अलग हूं, मैं इसका प्रयोग कर रही हूं, है ना। बिल्कुल जैसे डिटैच स्थिति का अनुभव सारा दिन कर्म करते हुए मुझे होता रहे। तो अमृत वेले से ही वो संकल्प मुझे पक्का करना है। और अमृत वेले बिंदु रूप स्थिति का अनुभव करना भी बहुत सहज होता है। अमृत वेले उस देही अभिमानी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में सारे विश्व को शांति के वाइब्रेशन देना भी बहुत सहज होता है, क्योंकि प्रकृति सहयोगी होती है। तो सबसे बेस्ट पावरफुल योग हम अमृत वेले इस रूप में कर सकते हैं, करें, और फिर पूरे दिन हमें अपने आप स्वतः उसकी मदद मिलती रहेगी। तो स्मृति शुरू हो जानी चाहिए अमृत वेले से, और सारे दिन कर्म करते हुए, जैसे बताया, बीच बीच में निराकारी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहें, और फिर रात को सोते समय अपना चार्ट जरूर चेक करें कि मेरी कर्मेंद्रियां, मेरा देह और मेरी कर्मेंद्रियों पर मेरा कितना अधिकार गया। मेरी आंखों ने मुझे धोखा तो नहीं दिया? मेरी अन्य के प्रति दृष्टि आत्मिक रही या दैहिक भी हो गई बीच बीच में? और मैं आत्मा राजा पूरी तरह अपने मन बुद्धि संस्कार को भी कंट्रोल कर सकी? मन में भी जब फुल स्टॉप लगाना चाहा, आती तो रहती हैं समस्याएं, क्योंकि रहते ही ऐसे ऐसे वातावरण में है तो ऐसा होता ही नहीं है। कोई ना कोई आत्मा विघन रूप बन जाती है या कोई भी, तो उस स्थिति में जो मन में हलचल हुई उसको मैं फुल स्टॉप लगा सकी? बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को कैसे यूज करना है वो तो फिर अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आत्मा अपने सत धर्म में, स्वधर्म में, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह करके उस पर विजय पा सके, ये चेकिंग हमें करनी है। ठीक है, तो ये था निरंतर देही अभिमानी स्थिति हम कैसे बनाए। ठीक है, ओम शांति।
विषय तो बड़ा महीन था लेकिन बहुत ही सरल और मृदु भाषा में बहुत सारे एग्जाम्पल प्रसंग हम सभी के सामने रख करके बहन जी ने विषय का अच्छा ही स्पष्टीकरण दिया है। आज हम सभी इसी अभ्यास को लेकर के इस दिन को बिताएंगे। कहा ना, सबसे बड़ी बात है देही अभिमानी बनने के लिए गहन अभ्यास की, तो आज पूरा ही दिन उस अभ्यास की अनुभूति भी करते रहेंगे। हम सब बहुत बहुत दिल से आदरणीय सविता बहन जी का धन्यवाद करते हैं। अभी 3 मिनट अच्छी देही अभिमानी अवस्था में बैठेंगे, ठीक है, अभ्यास अभी ही करते रहेंगे।